फ्री ई आवाज ऑफिशियल ऐप। ई आवाज टीवी को आप तमाम आईपी टीवी बॉक्सेस पर देख सकते हैं और अब ई आवाज टीवी रोकू ऐप पर भी दस्तयाब है। आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री।
Yeah. पुरानी कहानी और एक नया सबक, ये हमारा आज का टॉपिक रहे। मेरी आपसे दरखास्त है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे प्रोग्राम को हमारे साथ रहिए। रेडियो प्रोग्राम पैगाम हर इतवार के रोज पाकिस्तानी वक्त शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और अगर अगर पाकिस्तान में इस वक्त जो वक्त हुआ है, अगर हमारे जो बहन भाई पाकिस्तान में सुन रहे हैं, अगर हमें वक्त बताएं करेक्टली ताकि हम वो कोट करें कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या वक्त हुआ है, ताकि हम उसको सही वक्त आपको बता सके जब पाकिस्तान में रेडियो प्रोग्राम आप सुनते हैं। तो प्लीज आई एम वॉचिंग द कॉमेंट्स, तो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई आई कैन ऑल्सो सर्च हियर, लेकिन अगर वो बता दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तो
आगे
कि 7-8 बजे तो हम सब ये फीडबैक आपकी तरफ से आ रही है?
नहीं, मैंने कहा 1 घंटा आगे चले जाए, पाकिस्तानी टाइम आ जाएगा।
हाँ जी, तो अभी 9:15 हो गए हैं
जी,
8:15 हो गए, 8:15
जी
पीछे चले गए, तो हम 8 बजे पाकिस्तानी वक्त 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम को पेश करते हैं। और एक सेकंड, लेट मी शेयर द लिंक, तो कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड। एक बहुत अहम मौजू है, जैसे मैंने कहा आज का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, so I want you to make sure that you don't miss और ये तो प्रवेश साहब, हमारा जो प्रोग्राम है इस का जो मकसद है, ये इसका मकसद जो है एक्चुअली ये बहनों भाइयों को खुदा के प्यार के बारे में बताता है। हम जो भी कहें, जो भी टॉपिक हम पिक करें, the ultimate purpose is that you come to know the love of God that he has for you and also for others. ये जिसकी बात समझ में आ जाए ये हकीकत, I believe के उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाती है उस शख्स की. और sadly अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोग जो है वो इस हकीकत से आशना नहीं है, यानी कि वो मजहब को तो जानते हैं, मजहब को तो मानते हैं, लेकिन
किताबों को जानते हैं, मजहब
रसूलों को जानते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो खुदा की जो मोहब्बत है, जो मजहब का जो है ना, क्या कहते हैं उसको,
जो असल चीज है,
जी जो मजहब का जो क्या कहेंगे उसको, जो मकसद है मजहब का, वो भूल जाते हैं. और ये इसीलिए मैं हमने जो बहुत कई सालों से परवेज साहब आफ्टर वी काफी सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज दैट यू नीड टू हैव, दैट विदाउट लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत के बगैर आप की जिंदगी बेमकसद है. इसलिए मैंने देखा कि बहुत से लोग जो है, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, बहुत से जो लोग हैं जो मजहब, और बहुत से मजहबी लोग हैं जो खुदा की मोहब्बत से आशना है, दैट इज ट्रू, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत से मजहबी लोग हैं जो मजहब में तो बहुत आगे हैं लेकिन खुदा की मोहब्बत से आशना है. और इसकी वजह से जो दुनिया जो है, जैसी हमारी अपनी जिंदगी है, और ये दुनिया जैसी खुदा चाहता है करे वैसी चलती नहीं है. तो ये बात याद रखिए कि जो कुछ हम कहते हैं वो उसका जो महवर है वो ये है कि आपको, हमें खुद भी, अपने आप को भी ये बताना कि खुदा जो है वो आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है. तो जिस शख्स को ये बात समझ में आ गई, उसकी जिंदगी जो है वो बदल जिंदगी बदल जाती है. और I'm going to ask our translator to let me see the program for the translator. Let me see. और ये जो है, okay. तो ये जो बहुत जरूरी है प्रोफेसर, I have seen people. Extremely religious people, but full of hatred. And I'm not naming any. मैं किसी एक मज़हब की बात नहीं कर रहा. मैं I'm just global बात कर रहा हूँ कि लोग मैंने और जो how should I say it? इतना ज़्यादा वो होता है कि I wish के everything I put in your mind at the same time, not what I think, but I believe, but the word of God, what the word of God says. तो मोहब्बत का फुकदान है इस दुनिया में. उसकी एक वजह यह है कि हमें बताया नहीं गया मोहब्बत के बारे में, मजहब की ज्यादा अहमियत बताई गई. हाँ, तो आठ से दस बजे तक, आठ से नौ बजे तक हमारा प्रोग्राम आता है. सारा बहन, आप पाकिस्तान से हमारे प्रोग्राम को सुन रही है, आपका बहुत शुक्रिया. Sister Katrina, you're listening to our program. God bless you. Brother Shahzad, Ben Sarwar, Jinaab Faisal, Sahotra Sahab, Rifat, Imran Masihi, and Chaudhry Tanveer from Pakistan, and many other. I just cannot go up. Aapka shukriya ki aap wale program ko sun rahe. To आज हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया की आखिरी मजहबी किताब कौन सी है. अब सवाल पैदा ये होता है, ये एक बड़ा है, ये अक्सर सवाल किया जाता है कि आखिरी मजहबी किताब कौन सी है. बहुत से लोगों की राय इसके बारे में मुख्तलिफ है. अगर आप एक यहूदी से पूछेंगे तो वो आपको दुनिया की आखिरी मजहबी किताब कोई और बताएगा. अगर आप मसीही से मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जो दुनिया की आखिरी मजहबी किताब है वो अपनी समझ के मुताबिक बताऊंगा, है ना प्रोफेसर। अगर आप एक मुसलमान बहन भाई से पूछेंगे तो वो अपनी समझ के मुताबिक आपको बताएगा, अपनी तालीम के मुताबिक, कि ये है दुनिया की आखिरी मजहबी किताब। एक आप हिंदू से पूछेंगे या आप एक सिख से पूछेंगे तो अपने तरीकों से बताएंगे, आखिरी हो या ना हो वो कहेंगे कि ये किताब जो है ये दुरुस्त है। लेकिन चाहे कोई भी हो, क्या ख्याल है प्रोफेसर, ठीक है ना
जी।
अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो ये किताबें जो है वो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब है कि रुक जाती है, लेकिन अगर इन किताबों का सिलसिला चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो इनका इख्तिताम होना चाहिए, राइट, या दे आर कन्वर्जिंग समवेयर। ये एक मैथमेटिक्स की टर्म है, मैं आई एम अ मैथ टीचर, मैं मैथ का टीचर भी हूं एंड स्टिल आई टीच मैथ, स्कूल में नहीं लेकिन प्राइवेटली आई स्टिल टीच, I did teach in school for many years. And math is such a thing, Parvez sir, that I think that sari umar maine, it seemed like when I was a little child, I used to teach math. Ab mujhe aisa lagta hai, kyunki itne saal maine ye padhaya hai. So mathematics mein ek series converge hoti hai. Series converge hoti hai aur diverge hoti hai. Diverging hoti hai series, converging series hoti hai. तो जो मजहब है ये भी कन्वर्ज होता है किसी चीज के ऊपर, अल्टीमेटली कन्वर्जिंग टू समवेयर, यानी कि ऐसा है परवेश साहब के जैसे बहुत सी बातें आकर एक नुक्ते पर मुर्तकिज हो रही है, एक नुक्ते के ऊपर जमा हो रही है, इसको कन्वर्ज कहते हैं। कन्वर्ज की एक और मिसाल आपको भी दे दूं परवेश साहब, आपको याद है वो जो शीशा जो जिससे आग लग जाती थी कागज में, वो मुहद्दब अच्छा जिसको बोलते हैं ना, वो शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर आप उसको सूरज के सामने रखें तो सामने कागज रखे तो कागज में आग लगा देता है वो, है ना। और आप बचपन में क्या किया करते थे, बाजुका तो वो मुहद्दब अच्छा लेकर तो हमारे साथ मेरे दोस्त होते थे, उनकी गर्दन में पीछे लगा करते थे, उनको जब जलन होती थी फिर एकदम उछलते थे
जी।
तो मुहद्दब अच्छा क्या करता है कि जो सूरज की शुआएं हैं उनको एक जगह पर मरकूज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, यूं समझ लीजिए, राइट। तो शुआएं आती है और एक नुक्ते पर कन्वर्ज हो जाती है। अब मजहब जो है अगर ये एक सिलसिला चल रहा है, राइट, बाज को पीढ़ी फकीरे के सिलसिले होते हैं लोगों के, है ना, कई लक्ष्यबंदी है, मुझे अभी तक समझ आया कि लक्ष्यबंदी होता क्या है, सिवाय इसके इसमें अपनी ताकत इस दान, यू नो, जस्ट पावर, जस्ट फॉर सेक ऑफ पावर, किसी को फायदा नहीं होता किसी को कौन सा लक्ष्य बना हुआ है और किसी को कौन सा लक्ष्य नहीं बना हुआ, हु केयर्स, एटलीस्ट आई डोंट, एंड आई एम पैशनेट अबाउट दिस। जब मासूम लोगों को धोखा दिया जाता है मजहब के नाम के ऊपर, नक्शबंदी के नाम के ऊपर, पीरी फकीरी के नाम पर, आई गेट अपसेट, आई गेट मैड, एंड आई वांट टू फ्री दोज पीपल। इन पीरी फकीरियों के चक्कर में कितने पीर फकीर है प्रवेश सब, औरतों के साथ मुंह काला किया हुआ है क्योंकि उन बेचारों को पता नहीं, वी हैव टू फ्री दीज पीपल, राइट, दिस फ्री दिस फ्रॉम दिस रिलीजियस दिस सुपरस्टिशन। बट एनीवे, तो जब मैं गुस्से में आता हूँ सब, मैं गुस्से में नहीं आया, जज्बात की बातें हैं तो फिर हमारी थोड़ी सी वो सोच इधर उधर हो जाती है। तो मजहब जो है, एक सेकंड है,
वो पीर फकीर जो है वो मुंह कर लेते हैं,
ये पीर फकीर सब ठीक है, सब प्रायर टू दैट। तो जो हाँ, तो अगर मजहब का सिलसिला चल रहा है ना, जैसे बात शुरू हुई थी पीर फकीर का सिलसिला, तो मजहब का सिलसिला चल रहा है तो या तो ये चलता रहना चाहिए या इसका कहीं इख्तिताम है, है ना प्रोफेसर, या कहीं खत्म होगा या ये लामुतना ही है ना, या तो कभी खत्म होने वाला नहीं है और या तो खत्म, अगर तो कहीं खत्म होने वाला नहीं है तो फिर किताबें आती चली जाएंगी, तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, लेकिन अगर इसका इख्तिताम है कहीं पर तो फिर कहीं खत्म होना चाहिए, है ना, सीधी सी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी बात दुरुस्त है, कहां खत्म होना चाहिए, अगर खत्म होना चाहिए तो फिर कहां पर खत्म हुआ है, और अगर खत्म नहीं होना चाहिए तो कहां जा रहा है, ये भाई दो ही बातें, राइट। तो कुछ लोग कहते हैं जी खत्म हो गया, राइट, कुछ लोग कहते हैं यहां पर खत्म हुआ है, कुछ लोग कहते हैं जी यहां पर खत्म हुआ है, क्रिश्चियन कहते हैं जी यहां पर खत्म हुआ है, मुसलमान कहेंगे भी यहां पर खत्म है, ये नहीं कह रहा कि अब गलत है दुरुस्त है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कैसे लोग ऐसा कहते हैं, राइट। एक हिंदू बहन भाई से पूछे गए यहां खत्म, यहूदी कहेगा भी यहां खत्म हुआ है। तो सवाल पैदा होता है कि ये इख्तिताम कहाँ पर है, ये मजहब की जो आखिरी किताब कौन सी है या आखिरी मजहब कौन सा है, व्हाटएवर यू वांट टू से। लेकिन परवेज साहब बाज़ुकत क्या होता है कि हमारे जो सवालात होते हैं जो एक सेकंड कॉल आ रही है, देखते कि कल कॉल पे कुछ गड़बड़ थी। हेलो 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 सिंस यस्टरडे वी वर नॉट एबल टू टेक, अगर आप हमारी आवाज फेसबुक पर सुन रहे। जी बोलिए सर। I think he cannot hear.
Hello.
जी सर बोलिए। It is very sad. I just know. Yeah. अगर आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे तो I'm very sorry. Let me do this. तो आवाज गड़बड़ आएगी लेकिन आ जाएगी, चले ऐसा कर लेते हैं ना भरोज सर।
जी
let's do this. Okay. So. और ये पाकिस्तान से कॉल थी, ये पाकिस्तान से कॉल आती है जस्ट मोर इंटरेस्टेड बिकॉज इतने दूर लोग बैठे हैं क्या सोचते हैं से मैं पता लगता है। तो लेट्स सी, कामरान सरोज भाई आपका शुक्रिया, मिराज बसी आपका शुक्रिया। तो अब परवेज साहब बाज़ुकत जो है वो सवाल जो है वो गलत होते हैं, राइट। और अगर हम कहते हैं कि जो जो ये, तो मैंने ये काफी इसके बारे में सोचा कि ये जो सवाल है कि दुनिया की आखिरी किताब कौन सी है, ये अपनी जात में ये सवाल गलत है। अपनी जात में ये प्रोफेसर
जी
ये सवाल गलत है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बार एक शख्स ने ऐसा ही एक सवाल कर दिया, एक गलत सवाल कर दिया। गलत भी ये नहीं कि भाई गलत को बुरा सवाल कर दिया, लेकिन ऐसा सवाल जो हकीकत में जो सही नहीं था। और बाइबल में उसके बारे में लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये जो दुनिया की आखिरी मजहबी किताब है इसमें इस सवाल को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। और फिर हमें पता लग जाएगा एक्चुअली हकीकत में कि ये जो मजहब है ये कहां पर इसका आई बिलीव इर्तकाज वुड बी गुड वर्ड प्रॉपर वर्ड आई बिलीव उर्दू में ये इसका नुक्ता इर्तकाज कहां है, कहां पर ये मुर्तकिज हो रहा है, कहां पर ये ट्रेवल कर रहा है, कहां पर जाकर ये व्हाटएवर। तो देखिए लिखा है ये बाइबल में परमेश्वर लूका की इंजील उसका 10वां बाब है और उसकी 25वीं आयत, वहां लिखा है और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि अए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा लेट्स सी इफ हेलो 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 जी सर आपका नाम,
हेलो
आपका नाम सर बोलिए।
फैसल मसीह सोत्रा बोल रहा हूँ पाकिस्तान से, सैमसन भाई।
जी फैसल साहब बहुत शुक्रिया, बात कीजिए सर।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए साल में सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम और प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, खुदा मंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे।
बहुत शुक्रिया फैसल साहब, खुदा आपको भी बरकत दे। थैंक यू सर।
थैंक यू।
फैसल साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही थी, इंटरनेट
ये कुछ है, लेकिन एटलीस्ट हमारे जो बहन भाई उनको जा रही है फेसबुक पर। तो लेट्स डू। तो आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि आए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने एक सवाल किया, राइट। जैसे मैंने कहा कि सवाल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाज़ का सवाल गलत होते हैं या बाज़ का उनकी ऑर्गेनाइजेशन गलत होती है, उनको जिस तरीके से तरतीब दिया जाता है वो गलत होता है। उसने उससे कहा तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यस्सु से पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है, हु इज माई नेबर, हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है. एक्चुअली देयर इज अ होल स्टोरी आफ्टर दैट जो सबको पता है. इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी. अंग्रेजी में इसको गुड समैरिटन कहते हैं, उर्दू में नेक सामरी की कहानी है. लेकिन एक जो सवाल उसने किया, यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है, राइट? ये एक बड़ा एक पावरफुल सवाल है. मैं भी इस सवाल को यहीं पर, इस पैसेज को यहीं पर रोकूंगा. पर ये सब सवाल पैदा होता है कि जो एक शख्स है, मजहबी शख्स है, और उसने मजहब के मुताबिक एक सवाल किया मसीह यीशु से, जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा के नाम से भी लोग जानते हैं हमारे मुसलमान भाई भाई. तो इसने बड़ा अहम सवाल किया कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं. दूसरे लफ्जों में, मैं क्या करूं कि जन्नत में जाऊं. मसीह यीशु ने उसे कहा, तोरेत में क्या लिखा है? तेरे पास मजहब है तेरा, राइट? है ना, मजहब है तेरा, तो उसमें पढ़, उसमें क्या लिखा है ना, जो तेरा मजहब बताता है वो कर. तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी वालिद मोहब्बत रख. तो मसीह यीशु ने कहा कि ठीक है, फिर जो लिखा हुआ है वो कर. लेकिन ये शख्स ने एक और सवाल किया कि मेरा पड़ोसी कौन है. यहां पर जो है एक बहुत बड़ा राज हम पर खुलता है.
बहुत बड़ा राज
ये खुलता है कि देखिए, मजहब में अगर ये कहा गया है कि ये इबादत कर, है ना, परमेश्वर एक सिंपल सा एक मजहब का हुक्म है कि ये इबादत कर. लेकिन ये बजाहिर एक सादा सा हुक्म जो है, ये एक बहुत अपनी जात में कॉम्प्लिकेटेड होकर है. देखिए, तो ये अपनी जात में एक बहुत
थोड़ा से एलाबोरेट करेंगे ये. क्या
मैं बताता हूं? जी जी जरूर प्रवीण साहब, अच्छा आपने याद दिला दिया, लेकिन मैं जरूर इस पर एलाबोरेट करता हूं. ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है प्रवीण साहब कि मजहब में, और मैं ये किसी एक मजहब पे लगा के बात नहीं कर रहा, ये यहूदियत पे, दूसरे सब मजाहिब में ये बात सादिक आती है. जो भी मजहब पे अमल होता है, जो भी हुक्म होता है खुदा का, तो प्लीज गलत मत समझिएगा मुझे. तो क्योंकि बाज लोग होते हैं, जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूं, कोई लड़की है ना, उसको कोई छेड़ता नहीं है, जिसको ऐसा लगता है कि शायद मैं खूबसूरत नहीं हूं. बाज लड़कियां ऐसी होती है, उनको लगता है मैं खूबसूरत नहीं हूं. हालांकि ये बात गलत है. सबको खुदा ने खूबसूरत बनाया. अगर आप बहन है, I want you to look in the mirror and tell yourself, I am beautiful. Say after me, I am beautiful, Behenji, because God created you and God made you beautiful. So, लेकिन एक बहन को ये वहम हो गया कि वो परमेश्वर, वो क्या है?
को कुछ छेड़ता नहीं.
वो खूबसूरत नहीं है. वो कहती है कि सब कुछ छेड़ते, मुझे कुछ छेड़ता नहीं, right? तो जब भी कोई लड़की बताती कि फलाने लड़के ने मुझे छेड़ा, तो बड़ी जेलसी होती है. देखो, सब सारी दुनिया को लड़के छेड़ते, मुझे कोई नहीं छेड़ता. तो अगर इनको बास का होता था कि अगर कोई लड़का इनको ना भी छेड़े, तो ये ऐसी
चिड़ जाती थी
शायद मुझे छेड़ ही रहा है, क्योंकि दिल चाहता था कि मुझे छेड़े. तो बाज का ऐसा ही होता है मजहब में भी. हम किसी मजहब को छेड़ते नहीं है, लेकिन बास मजहब का हो सकता है लोगों का ये कि मुझे छेड़े ताकि मैं लड़ाई करूं. तो कहते नहीं, तुमने मुझे छेड़ा भाई, आपको नहीं छेड़ा भाई, है ना, नहीं भी आपने मुझे छेड़ा. तो ये मत कहिए आपने आपको नहीं छेड़ा, आप खुद ही छिड़ जाते हैं, तो वो अलग बात है. अब जैसे लड़की है बहन, चाहे जिसको गलत फहमी हो गई है ना, तो अगर आप कोई उसको आकर बता दे कि बहन जी आप खूबसूरत है, बी एट पीस विद योर सेल्फ, घबराइए मत, तो शायद फिर वो ख्वाहिश नहीं होगी उनकी कि कोई मुझे छेड़े, क्योंकि उनको पता है कि मैं खूबसूरत हूं. बहरहाल, तो अब छिड़िएगा मत, मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्लीज. तो परमेश्वर, अगर एक मजहब आपसे ये कहता है कि ये इबादत करो, ठीक है, और इबादत का जो है तकाजा ये है, यहूदी फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई जस्ट गो टू बाइबल, राइट, बाइबल में, बिकॉज के जब यहूदी बाहर से आते थे तो हाथ धोए बगैर खाना नहीं खाते थे. मिसाल के तौर पर बाइबल में एक वाक्य दर्ज है, हाथ धोने से परमेश्वर, अच्छा ओके, लेट मी पुट दिस वे परमेश्वर, जो आपको पता है कि ये जो जिबा का जो जब जानवर को जिबा करते हैं, जब गर्दन पे छुरी चलाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, है ना, हमारे मुसलमान बहन भाई करते हैं ना, हलाल जिसको बोलते हैं, राइट, और यहूदियत जो जुड़े जब उसमें कोशर बोलते हैं, राइट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस,
खून निकल जाए,
आपके सारा खून निकल जाए. एग्जैक्टली. और मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ये जो होता है ना, जो कसाई फटाफट छुरी चला दी ऐसे हमारे पाकिस्तान में, दिस इज नॉट. अगर आप किसी यहूदी से कहेंगे, एक बार एक यहूदी और एक मुसलमान बहन भाई की बात हो रही थी एक मस्जिद में, हम यहाँ पे डैलस में थे, तो वो कोई एक मीटिंग हो रही थी, तो मुझे बुलाया रेडियो की वजह से, लोग जानते थोड़ा बहुत, उन्होंने कहा आप भी आइए, मैं भी चला गया. तो वो सैटरडे फ्राइडे की नाइट थी, और यहूदी एक रैप आई था, लाइक अ बिग डील रैप आई, यू नो, फुल ड्रेस एंड ऑल दैट, उनके उनके मजहब के मुताबिक. और ही आल्सो गिव स्पीच. तो उसके बाद वो हमारे मुसलमान भाई उनसे कहते हैं कि भाई आप ठहरिए, खाना खाकर जाइएगा. एंड ही वाज पॉइंट ब्लैंक, दिस ज्यूइश रैबाई वाज पॉइंट ब्लैंक, एंड ही सेड वी कैन नॉट ईट योर फूड. तो ज्यूइश रैबाई ने मुसलमान बहन भाई से कहा, भाई से कहा कि भाई हम आपका खाना नहीं खा सकते. उसने कहा कि क्यों, हमारा खाना हलाल है. उन्होंने कहा राइट, आई अंडरस्टैंड कि आपका खाना हलाल है, लेकिन हमारे जो कोशर स्टैंडर्ड है, दे आर मच हायर. We have to have kosher meat. We cannot eat halal meat. Everybody sadly said that I'm very sorry. We love you. But this is our religious tradition. We cannot eat your food. And so, then I did that study. I also read that when Jews were killing animals, has to cut that jugular vein first. ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी डिटेल बातें हैं, जो खुदा के जो हुक्म है, ये they are not easy. Very, very. अब वो क्या होते हैं, क्योंकि बाइबल में एक बात मुझे बड़ी हैरान करती है कि थ्रू आउट द बाइबल वी सी अ गॉड हु इज कंपैशनेट. वो हर जगह पर अपने रहम की झलकियां दिखाता है, इसके बावजूद के लोगों को बास का तो मारता है, लोगों को जो बुरे काम करते हैं, लेकिन उसमें खुश नहीं होता खुदा के पास. तो जब आप ये काटते हैं ये जगलर वेन, तो इमीडिएटली जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन को प्रवेश, वो बंद हो जाती है इमीडिएटली. तो ब्रेन आपका जो है वो फील करने से करना बंद कर देता है, तो जो दर्द होती है जानवर को वो कम हो जाती है. सो देयर इज प्रॉपर वे. और जब वो जानवर को आप जिबा करते हैं, देन जो वहां पे रैबाई होते हैं, जो ज्यूइश जो मजहब के जो स्कॉलर होते हैं, मैं पढ़ रहा था, दे लुक एट वन मीट, दे लुक एट द लंग्स ऑफ द परवेसब, उसके फेफड़ों को देखते हैं वो जानवर के. अगर फेफड़ों में कोई स्पॉट है, दे विल नॉट ईट इट, दे से दिस एनिमल वी आर नॉट गोइंग टू ईट. अगर आप जाइए, अगर ये कोशर मीट मिलता है ऑनलाइन, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर करें कोशर मीट, तो आपको इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि इट्स वेरी हाई स्टैंडर्ड्स. लेकिन आई वाज थिंकिंग कि मैं ऑर्डर करूं और उसको खाऊं और देखूं कि हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर मीट. अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप जानवर को जिबा करते हैं, उसने बल्कि उसने ये कहा था कि जो चाकू की धार है वो भी एक खास हद तक होनी चाहिए, धार भी इतनी तेज होनी चाहिए कि जानवर को दर्द ना हो, क्विकली काम हो जाए. सो मेरा मकसद कहने का यह है कि जब ये कानून आप नाफिज करते हैं मजहब के, तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि कितनी धार होनी चाहिए, है ना? तो जी चाकू की धार तेज होनी चाहिए, सवाल भी कितनी तेज हो जी. ये जगलर वेन पहले कटनी चाहिए, पहले कितनी, कहां से शुरू होगी तो वो पहले कटेगी, थोड़ा उधर जाके काटे या बीच में काटे, कहां से काटे. कहने का मकसद ये है कि जो मजहब के जो कानून होते हैं वो अपनी जात में तशरी के क्या होते हैं, तशरी के उनको जरूरत होती है तशरी की, के भी अगर ये कहा गया तो आप कैसे करें, है ना भाई. अगर आपने नमाज पढ़नी है, राइट, आपने वुजू करना है, तो आपको परवेज़ आपको तो वुजू का पता होगा कैसे आपने किया हुआ है वुजू. तो मैं इस गुड थिंग प्लीज डोंट, आप ये मत कीजिए मैं आपको छेड़ रहा हूं, जैसे मैंने पहले कह दिया, राइट. तो मैंने बाइबल में से भी बात पहले बता दी. तो अब अगर ये है कि भी आपने नाक में उंगली फेरनी है, राइट, या कान में उंगली फेरनी है, राइट, कितनी बाहर रह जानी है, कितनी अंदर जानी है, देयर सो मेनी डिटेल्स. अब जब आप इस वक्त पर नमाज शुरू होती है, आप मुझे बताइए परमेश्वर, वक्त जो होता है एक लम्हा होता है, लम्हा, राइट, उससे अगर थोड़ा आगे हो जाए तो क्या नमाज कजा हो जाती है, अगर एक सेकेंड से कजा होती है या एक मिनट से कजा होती है, या 1.34567891058823 सेकंड्स पे जाकर वो कजा, वी डोंट नो. मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप मजहब के ऊपर पूरी तरह से अमल करना चाहे, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. देवरी उसकी, इसीलिए एक शख्स इस तरीके से नमाज पढ़ता है, दूसरा शख्स पढ़े तो फर्क तरीके से नमाज पढ़ता है। एक बार एक बहन का मुझे मैसेज बात हुई उनसे, वो इस्माइली, और मुझे कहने लगी कि सैफ भाई आप हमें बताइए कि पांच वक्त की नमाज पढ़ना जायज है या तीन वक्त। कहने लगे हम लोग तीन वक्त की पढ़ते हैं, ये इस्माइली बहन, उन्होंने बताया। तो हमारी अच्छी गुफ्तगू हुई। तो लेकिन सवाल पैदा होता है कि दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। एक शख्स कहता है मैं दुरुस्त हूं, दूसरा बोलेगा मैं दुरुस्त हूं, मैं ये नहीं कह रहा कौन गलत है, मैं मेरा काम ये नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मजहब की तशरीह में कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है। जहां पर ये शख्स पूछ रहा है कि ये तो बात ठीक है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, अब मुझे बता कि मेरा पड़ोसी कौन है। अब सवाल, एक सवाल का दूसरा सवाल निकल आता है, राइट, कि मेरा पड़ोसी कौन, अब बताइए, अब पड़ोसी के ऊपर चक्कर में आप पड़े रहे। और ये पूरी कहानी आगे बस यस्सु ने इसका जवाब दिया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना भी, हो सकता है मैं पढ़ भी दूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि मजहब को जब आप कहते हैं कि ये हुक्म है इस पर अमल करे, तो इसीलिए इंसान को चैन नहीं आता, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि कहां पर कितनी गलती हो गई उससे, क्योंकि मजहब के ऊपर अमल करना इज नॉट दैट ईजी। जो आप नमाज पढ़ते हैं, जो आप रोजे रखते हैं, जो आप चर्च जाते हैं, जो आप मंदिर जाते हैं, जो आप तहारत करते हैं, स्नान करते हैं गंगा में फॉर एग्जाम्पल, राइट, आपने गंगा में स्नान किया, फॉर मैं प्लीज बुरा मत मनाइएगा, मैं सिर्फ एक पानी में स्नान किया, तो जिस तरफ से पानी बहकर आ रहा है दूसरी तरफ से किस तरफ से पीपी करती उसमें होता ही है ना, मैं तो पॉइंट, हाउ वुड यू गेट योरसेल्फ क्लीन, कितना साफ पानी होना चाहिए, राइट, आप चर्च जाते हैं, मैं 9 बजे की सर्विस में चर्च जाऊं या 10 बजे वाली सर्विस में जाऊं, कितना, संडे को जाऊं या मंडे को चला जाऊं, ट्यूजडे को जाऊं, व्हाट शुड आई डू। तो ये शख्स भी जो है ये मजहब कह रहे कि मैं क्या करूं, राइट। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये सवाल होते हैं माजुकात, ये सवाल ही गलत होते हैं। आई बिलीव मसीह यस्सु इस सिचुएशन में जब उसने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी, मतलब मसीह उसने कहा अच्छा तेरा मजहब क्या कहता है, जब उसने कहा कि ये मजहब मेरा ये कहता है, तो मसीह उसने कहा अच्छा ये कर, आई न्यू जीसस न्यू, आई बिलीव जीसस न्यू कि अभी ये वापस आएगा, बोलेगा अच्छा इसकी तशरीह कर दो, राइट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, क्योंकि मसीह यस्सु को पता था कि ये मजहब जिसके ऊपर इतना घमंड कर रहा है दरअसल उस पर अमल नहीं कर सकता, राइट। तो वो कहता है कि अब मुझे इसकी तशरीह करके बता दे कि ये हुक्म का मतलब क्या है, राइट। फजर एक्चुअली शुरू कब होता है, जो ईद की, ईद का जो चांद है कितना ज्यादा हो, दूरबीन से जहां पे नहीं नजर आता वहां पे कैसे किया जाए, राइट। एक शख्स जो अपाहज है, एक शख्स औरत, जैसे बाइबल में है कि औरत के बाल है तो इसलिए वो बाल ढके, राइट। अब एक औरत बेचारी जो है वो बीमार है, उसके बाल झड़ गए, तो क्या करें, राइट, इट्स नॉट दैट सिंपल, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। और भी बहुत से लोग आकर अपनी अपनी बातें बताते बीच में। तो मसीह यीशु को पता था कि शख्स अभी कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसने कहा कि जीसस क्राइस्ट आई बिलीव वॉन्टेड हिम टू रियलाइज that this question actually is wrong. This question is wrong. ये कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, this question is wrong in itself. और ये आपको इस तरफ लेकर आएगा कि मेरे मजहब में ये लिखा है उस पर अमल करूं, then how would you explain what should I do in whatever my religion tells me. एंड पर आकर इसके परवेश साहब मसीह यीशु कहते हैं, एक कहानी बताते हैं, मैं बता ही देता हूं आपको कहानी, कि एक शख्स है वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहा है, रास्ते में डाकू उसको मारते हैं, अधमुआ करके छोड़ देते हैं। एक मजहबी आदमी गुजरता है, कतराकर चला जाता है, दूसरा मजहबी आदमी आता है, वो भी कतराकर चला जाता है। और ये दुरुस्त है, वैसा मत कहिए कि मजहबियों के ऊपर इतराज है, मजहब के लोग आज भी अपने मजहब के लोगों के दुख पर बड़े तड़पते हैं, दूसरे मजहब का शख्स मरता रहे उनको कोई परवाह नहीं, तो दुरुस्त बात है, बुरा मतलब ऐसा होता है। अच्छा, फिर एक काफिर आ जाता है, राइट, और वो पास से गुजरता है और कहते हैं कि ये, इस पर रहम आता है, कहते हैं कि ये तो बड़ा जख्मी आदमी, उसको बरम बरम लगा कर ले जाते हैं। यीशु ने उससे कहा कि तेरी दानिश्त में उसका कौन पड़ोसी ठहरा,
इन तीनों में से
उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसका पड़ोसी, देखिए इसने कहा था कि मैं अपने पड़ोसी से मोहब्बत करता हूं, करनी चाहिए, मुझे बता मेरा कौन पड़ोसी है ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं।
मेरा पड़ोसी कौन है
ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं। और बहुत से लोग एक घर छोड़कर अगर कहते हैं कि उससे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पड़ोसी तो सिर्फ हमारा साथ वाला, वो तो घर किराए पे चढ़े नहीं, वो तो है ही खाली, अल्लाह का खैर सलाह। तो बहुत से बहाने बनाते लोग, तो ऐसा भी होता है। बहरहाल तो मसीह ने कहा देख तू मुझे बता कि उसका पड़ोसी कौन था। उसने कहा कि वो जिसने जो करने वाला होता है, मसीह ने कहा कि वो पड़ोसी बनता है। तूने अगर मोहब्बत करनी है ना, है ना प्रोफेसर, अगर तूने मोहब्बत करनी है राइट, तो
यहां
बोलिए प्रोफेसर,
यहां पर देखा जाए तो उसके कपड़े भी नहीं है। जब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर, क्योंकि वहां पे पता नहीं चल रहा कि कौन सी कौम का आदमी है, कौन से मजहब का आदमी है, लिबास के, क्योंकि हम लिबास से अक्सर पहचाने जाते हैं। तो वहां सिचुएशन ये है, यीशु मसीह बताते हैं कि उसको उसको उसकी कोई पहचान नहीं छोड़ी
जी,
उसके कपड़े भी पहचाने कपड़े से भी पहचाना नहीं जा रहा था, लेकिन एक आदमी उसकी मदद करता है और वो यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू बता कि इन में से तू किसका पड़ोसी होना चाहता है।
राइट, यस,
तो
कंटिन्यू 100% मैं आपसे अग्री करता हूं जो आपने कहा। तो क्या हुआ कि मसीह ने कहा कि देख तू पड़ोसी को ढूंढ रहा है कि जिससे तू मोहब्बत करे, राइट। पड़ोसी हकीकत में वो होता है, पड़ोसी हकीकत में वो होता है जो जो दूसरों को देखता है, ये कहने के बजाय कि मेरा पड़ोसी कौन है, राइट। सवाल ये है कि तू किसका पड़ोसी बनना चाहता है, मुझे बता किसका पड़ोसी बनना चाहता है, राइट। ये मैं ढूंढ कि मेरा पड़ोसी कौन है, अपने आप से पूछ कि तू किसका पड़ोसी बनना चाहता है। रिवर्स किया मसीह ने सवाल, क्योंकि आप ये देखते हैं कि मैं पड़ोसी कौन है जिसकी मदद करूं, आपका पड़ोसी कौन है कौन नहीं? तुम मुझे बताओ कि तुम किसके पड़ोसी बनना चाहते हो। मैं तुम्हें अभी हजारों लोग बता दूंगा जिनके तुम पड़ोसी बन सकते हो। देखिए मसीह सुने कहा कि देख जो मजहब तेरा तुझे एक्सप्लेन नहीं कर सका मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूं। सवाल यह पैदा होता है कि ये शख्स ने अपनी मजहबी किताबें पढ़ी हुई परमेश्वर पढ़ी थी ना, लेकिन अगर इसको ये पता नहीं चल सका कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो फिर आप और इसकी नजर में, इस शख्स की नजर में इसकी किताब आखिरी किताब थी, इसकी नजर में तो आखिरी किताब थी ना इसकी, ये आलम था, ये मजहब का यहूदी आलम था ये। अगर इसको ये पता नहीं चल सका कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो परमेश्वर क्या इससे ये साबित नहीं होता कि वो जो आखिरी किताब जो समझ रहा है वो हकीकत में इसकी मदद नहीं कर रही? यही साबित हुआ ना, आखिरी किताब समझ के उस पर अमल कर रहा है और ये पता नहीं कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो भाई ऐसा कर, ये आखिरी किताब को छोड़, है ना, तुझे किसी और चीज की तुझे जरूरत है, ये आखिरी किताब तेरी मदद नहीं कर रही।
क्या बात है,
नहीं समझ, यही मसला हुआ ना कि ये तो आखिरी किताब पढ़ रहा है और फिर मुझसे आकर पूछ रहा है कि भाई ये कैसे करना है, ये तुझे पता नहीं चला कि पड़ोसी कौन है, है? आखिरी किताब को तू गले में हाथ पे उठा देते थे। तो सवाल ये है कि मसला ये नहीं है कि किताब आखिरी है कि नहीं परमेश्वर, है ना, कि क्योंकि किताब जो होती है वो आपको किताब में जो लिखे हुए कानून होते हैं परमेश्वर, वो किताब ही में रहते हैं ना बहन भाइयों, आपके दिल का हिस्सा नहीं बनते,
अमल तो आपने करना हो,
तो आपने करना। अगर आपको आखिरी किताब समझा ही नहीं सकी कि मेरा पड़ोसी कौन है, अगर आपको आखिरी किताब खुदा की पहचान नहीं करवा सकी, राइट, तो हमें ये कह करके ये आखिरी किताब है, मैं समझता हूं कि हमें रास्ते से भटकाया जाता है। आई बिलीव क्योंकि जो जिस नुक्ते पर आकर मजहब मरकूज होता है वो आखिरी किताब नहीं है। वो नुक्ता ये है कि आखिरी किताब से आप सीख क्या रहे हैं, खुदा आखिरी किताब के जरिए आपको कहां पर लेकर जाना चाहता है, क्या काम करवाना चाहता है, राइट? और जो काम खुदा आपसे करवाना चाहता है वो कोई किताब नहीं करवा सकती। दैट इज माई पॉइंट। वो किताब यही विशेषता है क्योंकि
वो मोहब्बत कर
जी, क्योंकि क्योंकि जो 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 आखिरी किताब में जो मजहब जो लिखा हुआ है उस ये तो बताया नहीं कि मेरा पड़ोसी कौन है। आखिरी किताब ने आपको और बहुत सी बातें हैं जो नहीं बताई आपको, है ना? तो जिसका आपको पता नहीं, राइट? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको ये पता नहीं कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, राइट? तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये कहना काफी है कि ये किताब आखिरी है, या ये कि जिस सवालों की जो मुझे जरूरत है क्या वो मुझे मिल गए हैं कि नहीं, राइट? ये बात मसीह यीशु ने यहां पर इस शख्स को बताई है कि जिस किताब को तू आखिरी किताब समझ रहा है वो तुझे इतना नहीं समझा सकी कि पड़ोसी कौन है तेरा, राइट? तू कम एक्चुअली मैं तुझे समझाता हूं पड़ोसी कौन है तेरा। मसीह यीशु शरीयत की तकबील करने के लिए आए हैं, और देखिए मजहब जो किताब है वो आपको अच्छा नहीं बना सकती। अच्छा कौन बनाता है? किताब में जो लिखे हुक्म है वो किताब में रह जाते हैं। हुक्म वो होते हैं जो आपके दिल में आते हैं, जो आपके दिल के अंदर लिखे जाते हैं, और जो दिल से जो बात निकलती है उसके लिए किसी लॉ की किसी मंतक की जरूरत नहीं होती। बास लोग हैं उनका दिल ये चाह हो सकता है कि परवेश साहब ये दो मजहबी शख्स जब उस जख्मी शख्स को देखकर गुजरे हो उनका दिल चाह रहा हो किसकी मदद करे, ये जख्मी है दिल तो चाहता है यार ये मर रहा है, यार ये दूसरे मजहब का ये हिंदू है ये मसीही है ये मुसलमान है ये मर रहा है, लेकिन उनका दिल हो क्योंकि वो उस वक्त उनके दिल में खुदा का हुक्म नहीं आया, वो मजहब की वो किताब की बातों को देखकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो हुक्म खुदा का आपके दिल पर आता है फिर आपका दिल तब्दील होता है। और देखिए बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल हमें बताती है
आपके काम भी खुदा के कामों के
जी। बाइबल में एक खूबसूरत एक बहुत खुदा के प्यारे नबी गुजरे हैं, मीका नबी, उनकी उनका जो सहीफा है उसके छठे बाब और उसकी आठवीं आयत में बहुत ही खूबसूरत बात प्रवेश लिखी है। मैं आपके सामने बहनों भाई पढ़ता हूं इसको, कैमरा ओके, इसको गौर से सुनिए सुनिए। और अए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, किसने? खुदा ने। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। खुदा इसके अलावा तुझसे क्या चाहता है? ये सारे तेरे चर्च जाना, ये सारी तेरी कुर्बानियां, सारी तेरी नवाजे, सारे तेरे रोजे, बाइबल एंड पर जो नुकता जिस पर मरकूज होता है मजहब, बाइबल हमें बताती है कि इंसान ये सारी बातों से दरअसल खुदा तुझसे और क्या चाहता है? इतनी सी बात सिर्फ खुदा तुझसे चाहता है और तू घर चक्कर बना हुआ है मजहब के, इस पर बात कर ली, ये नहीं खाना, वो हिंदू है वो मुसलमान है वो शिया है वो सुन्नी है वो काफिर है, घर चक्कर बनाया हुआ है क्योंकि ये किताब आखिरी है, वो किताब पहली है, ये किताब दरमियानी है, वो किताब तीसरी है, व्हाटएवर। तो अए इंसान, उसने तुझ पर अपनी नेकी जाहिर कर दी है, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। इंसाफ कर, रहम कर, इसके एक एक आयत के लफ्ज के ऊपर पूरा पूरा मैसेज दिया जा सकता है। और रहम दिली को अजीज रखे, रहम कर दूसरों के ऊपर जिसका फुकदान है और ये खुदा को ना समझने की वजह है इसकी। उसके बाद परमेश्वर खुदा क्या कहता है बाइबल में, खुदा कहता है, मैं आपको बताता हूं, यर्मिया नबी एक और खुदा के बहुत बड़े नबी गुजरे हैं, उनके सहीफे में यूं लिखा है, उनके सहीफे 31वां बाब और उसकी 33वीं आयत पर, वैसा 33 वर्स, उसमें लिखा है क्या बात। अब ये देख देखकर मुझे आई जस्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली ये बातें हैं। लिखा है ये बनी इसराइल के लिए बात हो रही है, बट दैट ऑल्सो इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज थ्रू जीसस क्राइस्ट मेक पॉसिबल। लिखा है खुदावंद फरमाता है मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा, अपनी शरीयत उनके दिल में लिख दूंगा, पर सब किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं उनका खुदा हूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और मेरे लोग
मेरे लोग होंगे
और फिर वो अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को कभी याद ना करूंगा। खुदा कहता है परवेश साहब कि मैं किताब से हुक्म निकालकर तुम्हारे दिल पर लिख दूंगा, और जब तुम्हारे दिल पर लिखे जाएंगे हुक्म परवेश साहब, वो आखिरी मंजिल है मजहब की, जो किताब से आगे, आखिरी किताब से के बाद भी एक और मंजिल है। आखिरी किताब मंजिल नहीं है, आखिरी किताब वो किताब है, वो लिखाई है, बस किताब के अंदर लिखाई होती है ना परवेश साहब, किताब लिखाई है और क्या है, आखिरी किताब वो लिखाई है जो आपके दिल के ऊपर लिखी जाती है, आपको पता लगे, आपका दिल गवाही देता है कि ये बात गलत है ये दुरुस्त है, आपका दिल खुदा का घर बन जाता है। और ये खुदा क्या कहता है, खुदा मैं ये करूंगा, मजहब नहीं करेगा, आई विल डू इट। जब आप, और ये कैसे होता है, जब आप खुदा के पास आते हैं और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, कहते हैं कि मजहब के होने के बावजूद मुझे आज तक पता नहीं चल सका कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तालिए राइट, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा राइट। खुदा से आप अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसको इकरार करते हैं कि जो मजहब तूने मुझे दिया उस पर मैं अमल नहीं कर सका, ना कर सकता हूं, फिर खुदा अपने रहम से, अपने फजल से उस सारे मजहब का जो खुलासा है परमेश्वर, मजहब का खुलासा।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
खुशखबरी, हुण तुहानू अपने प्यारियां नू पैसे भेजण लई किते जाण दी लोड़ नहीं। Zoom ने पैसे भेजण दी प्रक्रिया नू बहुत आसान कर दिता है। XOOM Zoom, अपने फोन ते XOOM ऐप डाउनलोड करो अते अपनी उंगली दे एक इशारे नाल पैसे भारत पाकिस्तान भेजो। Zoom XOOM मनी ट्रांसफर भारत दीआं मुख बैंकां विच पैसे सीधे तौर ते ट्रांसफर करन दी सहूलत दिंदा है, नाल ही कैश पिकअप करो। याद रखो, डालर दा वधिया रेट, आसान अते फास्ट सर्विस, अते पैसे भेजो बिना किसी कमीशन ते। XOOM Zoom, एक पेपल सर्विस, तेज अते सुरक्षित मनी ट्रांसफर। Zoom XOOM।
इस रविवार दोपहर 1 बजे पेटल ऑक्शन एक शानदार जूरी ऑक्शन करने जा रहा है। कस्टम्स की सीज किए हुए डायमंड्स और बहुत से कीमती गहने, जैसे 1 से 4 कैरेट की डायमंड रिंग्स, 22 कैरेट गोल्ड, एमरल्ड और रूबी सेट्स पर डील्स पाइए, और लीजिए अपनी मनपसंद ब्राइटलिंग, ओमेगा और कार्टिए घड़ियां। बिड्स ऑन रोलेक्स वॉचेस एंड डायमंड स्टार्ट फ्रॉम 70% बिलो रिटेल, सिर्फ इस रविवार दोपहर 1 बजे एट पार्क इन बाय रैडिसन, 175 डेरी रोड ईस्ट, मिसिसागा। अधिक जानकारी के लिए petalauction.ca/mississauga और कॉल 416-726-6884।
की तुहानू पता टेक्नोलॉजी बदल करके जेकर तुहाडा बिजनेस गूगल सर्च दी टॉप दे उपर नहीं तां तुसी 80% बिजनेस लूज कर रहे हो। आज ही अपने बिजनेस नू गूगल सर्च दी टॉप दे उपर ले आउंदे लई कॉल करो हीरो मीडिया। बिजनेस ब्रांडिंग करनी होवे जां फिर सोशल मीडिया प्रमोशन, तुहानू बनावे जीरो तों हीरो। वेबसाइट ते ऐप भी डिजाइन करदे हन। 905-500-1313 विजिट करो heromediatoronto.com। हीरो मीडिया।
घर नवा है जा पुराना, उदे विच वधिया शेड्स लगे होण तां होर भी खूबसूरत हो जांदा है। कैलिफोर्निया शटर, ब्लाइंड्स, वर्टिकल्स, रोलर शेड्स, हनी कैंप्स,
ਸਲੀਟਡ ਸ਼ੇਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ। ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 416-803-1043 416-803-1043 ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड।